ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद पर जनता समाजवादी पार्टी के रामसाहेब प्रसाद यादव हुए निर्वाचित। अगले हफ्ते तक सरकार को पूर्णता प्राप्त होगी, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा, राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल का कथन। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर सोमवार को करेंगे रूस का दौरा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद पर जनता समाजवादी पार्टी के रामसाहेब प्रसाद यादव निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज हुए चुनाव में जसपा के उम्मीदवार यादव 30,328 मतभार प्राप्त कर निर्वाचित हुए। वहीं उपराष्ट्रपति पद के ही आकांक्षियों नेकपा एमाले के अष्टलक्ष्मी शाक्य ने 16,318 मतभार और जनमत पार्टी की ममता झा ने 2,537 मतभार प्राप्त किया। बता दें कि यादव को 184 संघीय सांसदों और 329 प्रदेश सांसदों ने मतदान किया था, जबकि शाक्य को 104 संघीय सांसदों और 169 प्रदेश सांसदों के मत प्राप्त हुए। वहीं झा को 23 संघीय सांसदों और 15 प्रदेश सांसदों ने अपना मत दिया था। गौरतलब है कि जसपा की ही ओर से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी और बाद में अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर चुकी प्रमिला यादव को भी एक प्रदेश सांसद का वोट प्राप्त हुआ था। बता दें कि यादव ने निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की थी, इसलिए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम भी बरकरार था। इस बीच नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादव को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड समेत विभिन्न नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि चैत 10 गत तक सरकार को पूर्णता मिल जाएगी। आज इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक के बाद संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि चैत 6 गते को वे विश्वास मत लेंगे और उसके 3-4 दिनों में सरकार पूर्णता प्राप्त करेगी। बता दें कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में विकास कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपनी परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को बताया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने कहा कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा। विश्व कप क्रिकेट क्वालिफायर के लिए चुने जाने के बाद नेपाली क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामना देने के लिए आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पोटेल ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि नेपाली क्रिकेट टोली ने देश की इज्जत और गौरव को बढ़ाया है, राष्ट्रपति पोटेल ने कहा कि देश की शान को बरकरार रखने के लिए खेलकूद क्षेत्र में पूर्वाधार विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने विश्व कप क्रिकेट क्वालिफायर में चुने गए नेपाली खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप प्रति खिलाड़ी 3-3 लाख रूपये प्रदान करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने आज सुबह सरकारी निवास बलुआटार में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार की घोषणा की। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि इस जीत से देश का स्वाभिमान और गौरव बढ़ा है। राष्ट्रीय खेल परिषद को कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान में जल्द ही आधुनिक फ्लड लाइट और स्कोर बोर्ड लगाने का निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सरकार काठमांडू के मूलपानी और चितवन सहित देश के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण में तेजी लाने के लिए काम कर रही है। इसी बीच बागमती प्रदेश सरकार ने भी सन 2030 के वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड के लिए क्वालिफाई हुई नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 1-1 लाख रूपये देने का निर्णय किया है। ये जानकारी प्रदेश के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री एवं प्रवक्ता जगन्नाथ थपलिया ने दी। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री शालिग्राम जम्मकट्टेल चैत 8 गते विश्वास मत लेंगे। मुख्यमंत्री जम्मकट्टेल द्वारा विश्वास मत लेने के बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे प्रदेश सभा बैठक का आह्वान किया गया है। ये जानकारी प्रदेश सभा सचिवालय ने दी। बता दें कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री जम्मकट्टेल प्रदेश सभा में विश्वास मत लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने कहा कि नेपाल के पर्यटन विकास में गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में एनआरएनए के प्रतिनिधियों के साथ हुई मुलाकात में राष्ट्रपति पोटेल ने कहा कि गैर आवासीय नेपालियों की गतिविधियों और अभियानों से वे अवगत हैं और संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने की उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई। राष्ट्रपति पोटेल ने आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्मस्थल तनहू के चुदी रमघा में राष्ट्रीय एकता को भावनात्मक रूप से विकसित करने के लिए व्यापक योजना में भाग लेने का एनआरएनए के प्रतिनिधियों से आग्रह किया। एनआरएनए के कार्यकारी अध्यक्ष रवीना थापा, अध्यक्ष कुल आचार्य और संस्थापक अध्यक्ष डॉ उपेंद्र महतो ने राष्ट्रपति पोर्टल को संघ की ओर से सफल कार्यकाल की शुभकामना दी, साथ ही संघ के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण भी कराया। इसी तरह राष्ट्रपति पोर्टल को नेपाल उद्योग परिसंघ ने भी सफल कार्यकाल की शुभकामना दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि रुग्ण परियोजनाओं को संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। काठमांडू घाटी के भैंसेपाटी, बौद्ध जोरपाटी, बालाजू बाईपास लगायत क्षेत्रों में अनुगमन करने के दौरान उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि रुकी हुई परियोजनाओं के काम को संपन्न करने के लिए निर्माण व्यवसायियों द्वारा किए जा रहे कामों का लगातार अनुगमन किया जाएगा, साथ ही परियोजनाओं की प्रगति के विषय में भी अनुगमन किया जाएगा। पर्यटन तथ्यांक संबंधी एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय कार्यशाला काठमांडू में संपन्न हुई है। कार्यशाला का निष्कर्ष था कि पर्यटन विकास के लिए एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकसित की जाए। विश्व पर्यटन संगठन NWUTO, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बेटर डेटा फॉर बेटर टूरिज्म इन साउथ एशिया एंड पैसिफिक क्षेत्रीय कार्यशाला के जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के समग्र पर्यटन विकास के लिए रणनीतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। कार्यशाला में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ईरान, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, कोरिया, थाईलैंड, स्पेन लगायत 11 देशों के प्रतिनिधि सहभागी थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने कहा है कि पत्रकारों को समाज में व्याप्त विकृतियों और असामंजस्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उनके सफल कार्यकाल की कामना करने के लिए शीतल निवास आए नेपाल पत्रकार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में राष्ट्रपति पोर्टेल ने सटीक और सच्ची जानकारी प्रदान करने में एक छाता संगठन के रूप में महासंघ द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की थी। मुलाकात के दौरान महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को पत्रकारों की स्थिति और नेपाली पत्रकार जगत की समस्याओं से अवगत कराया था। जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग ने जिले के कुछ एक स्थानों को निषेधित क्षेत्र घोषित किया। कोशी प्रदेश नामकरण के बाद विभिन्न समूहों और पक्षों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कुछ स्थानों को निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया। सुरक्षा स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य के साथ जिला सुरक्षा समिति मोरंग ने चैत 5 गते सुबह 6 बजे से अगला आदेश आने तक के लिए निषेधित क्षेत्रों में सर्वसाधारण और वाहनों की आवाजाही के अलावा अन्य किसी भी तरह के सभा, जुलूस, रैली, धरना जैसी गतिविधियां न करने को लेकर आगाह किया है। नेपाल भारत 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव आज से विराटनगर में शुरू हुआ है। ये महोत्सव विराटनगर महानगरपालिका और कनित धरा साहित्य एकेडमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया है। महोत्सव में पुस्तक विमोचन, बहुभाषिक कवि सम्मेलन और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यकारों के संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये घोषणा की। शी इस यात्रा के दौरान रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक संक्षिप्त घोषणा में कहा, रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस की राजकीय यात्रा करेंगे। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC के इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 5 साल के तीसरे कार्यकाल का समर्थन करने के बाद शी पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शी जिनपिंग का ये पहला रूस दौरा होगा। जिनपिंग की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब चीन, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में शांति बहाली के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद पर जनता समाजवादी पार्टी के राम सहाय प्रसाद यादव हुए निर्वाचित। अगले हफ्ते तक सरकार को पूर्णता प्राप्त होगी, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर सोमवार को करेंगे रूस का दौरा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।